Shandy.
तो आज सारा संसार एक वीरान सी बस्ती बन चुका है, एक खंडहर, चारों ओर तबाही तबाही है। ऐसी वीरानी में और ऐसी तबाही में यदि कोई एक सहारा है, यदि कोई एक भरोसे का स्थान है, यदि कोई एक खुशियों का महल है, तो वो है मधुबन। भक्तों की जो पुकार है, संसार के सभी व्यक्तियों की जो सहारा ढूंढ रहे हैं, ऐसे उनकी पुकार ईश्वर या अल्लाह ने जो पूरी की है इस संगम युग में, वो मधुबन के द्वारा। चारों ओर नफरत की आंधी है, हर दिल में नफरत का जैसे जहर भरा पड़ा है, तो इस घृणा नफरत और द्वेष से भरे संसार में उस ईश्वर या उस अल्लाह ने एक ही प्रेम की छाया जो बनाई है, वो है हमारा सबका प्यारा मधुबन। तो आज इसी मधुबन की हम चर्चा करेंगे। उसके पहले इस गीत से शुरुआत करेंगे, जिसमें ये दोनों ही भाव बहुत सुंदर रीति से वर्णन किए हुए, जो किसी भक्त की पुकार है। ओम शांति।
ओम शांति। आज वर्तमान समय संसार की सभी बस्तियां वीरान बन चुकी हैं। इन बस्तियों को वीरान बनाने के विशेष दो कारण हैं, दो प्रकार की आपदाएं हैं। एक तो पहली आपदा है प्राकृतिक आपदाएं, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि जब भी कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है, तो आपदा आने के बाद जो बस्तियों का स्वरूप होता है वो वीरान होता है। दूर दूर तक कहीं कोई सहारा नजर नहीं आता है। इन आपदाओं के आने से पहले जो बस्तियों में खुशहाली थी, आपसी प्रेम था, सहयोग की भावनाएं थी, वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस समय गवर्नमेंट या जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो उनको सहयोग देती हैं। उनके माध्यम से उनका जीवन पुनः फिर से रास्ते पर आ जाता है और जीवन में खुशहाली आ जाती है। लेकिन जो दूसरी आपदा है, उस आपदा में कोई किसी का सहयोगी सहारा नहीं बन सकता है। तो दूसरे प्रकार की आपदा कौन सी होगी? जो वर्तमान समय जिसने सभी मनुष्य आत्माओं को एक वीरान बस्ती के रूप में खड़ा कर दिया है, जहाँ व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, असहाय महसूस कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो वो आपदा कौन सी है? विकारों की आपदा, मनोविकारों की आपदा। तो इस आपदा को मनुष्य ने एक स्वयं ही क्रिएट किया हुआ है। हर मनुष्य के मन में जो बसे हुए विकार हैं, बुराइयां हैं, उन्होंने ही ऐसी संसार में स्थिति पैदा की हुई है जिसके माध्यम से मनुष्य स्वयं ही एक वीरान बस्ती में स्वयं को अनुभव कर रहा है। तो मनुष्य के मन में जो विकार हैं, बुराइयां हैं, चाहे ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, स्वार्थ की भावना है, अहंकार है, इनके माध्यम से व्यक्ति जब दूसरों के साथ पेश आता है, तो जब ये व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसमें उसको अल्पकाल की सफलता तो मिलती है, लेकिन दीर्घकाल के बाद उसकी वही बुराई उसके लिए एक समस्या बन जाती है, उस व्यक्ति को सबसे अलग थलग कर देता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अहंकार एक ऐसा अवगुण है, एक ऐसी बुराई है, जब व्यक्ति इसको पालता है तो उस समय उसको बड़ी खुशी होती है कि हम इसके माध्यम से अपने जीवन में सफलता हासिल कर रहे हैं, सभी हमारी बात को मान रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन दीर्घकाल के बाद उसका वही अहंकार उसको सबसे अलग कर देता है। तो इस प्रकार से हर एक आत्मा ने अपने जीवन में कोई ना कोई एक बुराई को स्थान दिया हुआ है, उसके माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयास करते हैं या अपनी मंजिल को हासिल करने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि उसके माध्यम से वो अपनी मंजिल से और ही भटक गए, जीवन में सफलता नहीं, सफलता की बजाय असफलता का अनुभव कर रहे हैं, असहाय का अनुभव कर रहे हैं, सबसे अलग अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में न दूसरों का सहयोग मिलता है, न दूसरों का स्नेह मिलता है, तो फिर क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। अर्थात उसके लिए इतनी बड़ी बस्ती होने के बावजूद भी जैसे कि वीरान है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि माता पिता हैं, अगर माता पिता में अहंकार की, ईगो की भावना है, उनके अंदर रौब है कि मैं परिवार का मुखिया हूँ, तो मैं जो चाहूँ वैसे चलूँ, या अपने छोटों को, बच्चों को, या जो भी परिवार के मेंबर हैं उनको हम अपने हिसाब से चलाएं, जो कि राइट नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर बाद में क्या होता है कि उसके परिवार के मेंबर या उसके बच्चे उनसे अपने आप को अलग करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो चाहते हैं कि बच्चे जो हम चाहते हैं वो करें, उससे आगे बढ़ें। हो सकता है कि उनमें वो विशेषता ना हो जो उनको फॉलो कर सकें, उनमें कोई अपनी कमी कमजोरी हो, लेकिन माता पिता अगर इस बात में अड़े गए कि जैसा मैं चाहूँ वैसे ही बच्चे करें, जो मैं चाहता हूँ बच्चे वही बने, अगर बाप चाहता है कि बच्चे डॉक्टर बने लेकिन उसमें वो योग्यता नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, अपने आप को उनसे दूर करेगा ना। तो माँ बाप की चाहना तो अच्छी है लेकिन उनको प्रॉपर इस बात का बोध नहीं है, एहसास नहीं है कि हर एक आत्मा की अपनी अपनी विशेषता है, उसकी अपनी अपनी योग्यता है, तो हमें उसको देख करके ही उसको कार्य में लगाना है। जबकि परिवार का अर्थ ही होता है कि एक दो का सहयोगी बनकर चलना, सबको साथ देना, सबसे मिलकर चलना। लेकिन अगर ऐसी कोई विशेषता, ऐसी कोई बुराई को हम अगर जीवन में लाकर चलते हैं तो लंबे समय के बाद हम उनसे अलग पड़ जाते हैं। तो आज जो माँ बाप की प्रॉब्लम्स है कि बच्चे उनका साथ नहीं देते हैं, बच्चे उनसे अलग हो गए हैं, जिस समय उनको बच्चों का सहारा चाहिए था बांधस्थ अवस्था में, बुढ़ापे में, उस समय ही बच्चे उनसे अलग हो चुके हैं। तो उसका कारण क्या हुआ, उनकी अपनी बुराई। तो जिस समय बच्चों का सहारा मिलना था उस समय बच्चों से वो बेसहारे हो गए, अर्थात वो अपने आप को वीरान अनुभव कर रहे हैं। जबकि वर्तमान समय बस्तियां भरपूर हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, रहने के लिए बड़े बड़े महल हैं, परिवार में काफी सदस्य हैं, किसी परिवार में 8 होंगे, किसी में 10 होंगे, लेकिन इन सब के बीच में रहते हुए भी स्वयं को वीरान स्थिति में अनुभव कर रहे हैं। तो इन सभी बातों का जो कारण है वो मनुष्य की अपने मनोविकार हैं, बुराइयां हैं, कोई ना कोई बुराई को लेकर के हम जीवन में चल रहे हैं। तो वर्तमान समय सारे संसार की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को वीरान स्थिति में, वीरान बस्ती में अनुभव कर रहा है। मतलब देखने में आता है कि बहुत बड़े संगठन के साथ रह रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, लेकिन इतने बड़े शहरों के बीच में रहते हुए भी अपने आप को वीरान बस्ती में अनुभव कर रहे हैं, जैसे कि इसमें हमारा कोई भी सहारा नहीं है, कोई अपना नहीं है, सब पराये हैं। तो इसका कारण क्या हुआ कि मनुष्य की अपनी मनोविकार, कोई ना कोई बुराई। तो जब वर्तमान समय संसार ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है तो सारे संसार का रखवाला, जो खुशियों का सागर बाप है, उसने संसार में इस वीरान बस्ती में आकर के अपना एक खुशियों का महल बसाया हुआ है। और वो खुशियों का महल कौन सा है, मधुबन। तो वर्तमान समय जो मधुबन है वो सारे संसार की सर्व आत्माओं के लिए ये खुशियों का महल है, जहाँ से ही सारे संसार के सर्व आत्माओं को जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी जरूरत है, जो उनकी आवश्यकता है, उन सब की पूर्ति यहाँ से होती है और होनी है। तो संसार के सर्व आत्माओं की चाहना है कि जो उनकी जरूरत है, खुशी, सुख, प्यार, आनंद या सहयोग, वो सब कहाँ से मिलने वाला है, मधुबन से, कि संसार की आत्माओं से उनको ये सब प्राप्तियां नहीं हो रही हैं। तो बाबा ने इस मधुबन भूमि को, इस मधुबन घर को ऐसा लाइट हाउस, माइट हाउस बनाया हुआ है जो सारे संसार की आत्माओं के लिए एक खुशियों का महल है। तो इस खुशियों के महल की क्या क्या विशेषताएं होंगी, इस खुशियों के महल की पहली विशेषता है कि इसका केयर टेकर स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान के देख रेख में ये महल बना हुआ है और इसकी पालना हो रही है। तो बाबा कहते हैं कि इस महल में इसका लाभ लेने के लिए जो बाबा की आज्ञाएं हैं, जो बाबा की श्रीमत हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना, बिना कुछ किए कोई प्राप्ति नहीं होती है। तो बाबा ने हमें इस खुशियों के महल में, चाहे रहने वालों के लिए या अन्य आत्माओं के लिए, जो श्रीमत दी है, जो आज्ञाएं दी हुई हैं, बाबा कहते हैं उन आज्ञाओं पर चलो तो आपके जीवन सदा खुशियों से भरपूर बनेगी। तो पहली बात है कि जो आत्माएं बाबा के बच्चे बन चुके हैं, उनका फर्ज बनता है कि अपने जीवन को ऐसे खुशियों से भरपूर बना लेना, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बना लेना, क्योंकि संसार की जो अन्य आत्माएं जो स्वयं को वीरान बस्ती में अनुभव कर रही हैं, उन आत्माओं को सहयोग देने के लिए पहले स्वयं को भरपूर करना आवश्यक है। अगर हम स्वयं ही खाली होंगे तो उनको सहयोग कैसे दे सकेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों के लिए जो विशेष श्रीमत दी है, आज्ञा दी है कि अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक जो बाबा की श्रीमत है, संकल्प से लेकर के हर कर्म के लिए उस पर हमें चलना है, उसको जैसा का वैसा फॉलो करना है, क्योंकि परमात्मा आज्ञा है ही श्रेष्ठ। तो बाबा कहते हैं उस आज्ञा पर चलते रहेंगे तो जो आप चाहते हैं कि स्वयं के जीवन संपन्न बने, भरपूर बने, वैसी आपकी जीवन बनेगी। तो पहली बात है कि बाप की आज्ञा पर चलना, स्वयं को उस आज्ञा पर चलते हुए सर्व खजानों से संपन्न बनाना, ये हम सभी का पहला फर्ज है, पहला कर्तव्य है कि स्वयं को अपने आप को ऐसा योग्य बनाना। उसके बाद संसार के जो अन्य आत्माएं हैं, जो वर्तमान समय वीरान बस्ती में हैं, उन आत्माओं का सहयोगी बनना। तो बाबा कहती है कि उन आत्माओं का सहयोगी बनने के लिए आपको मनसा से, वाचा से, कर्म से, संबंध संपर्क से, अपनी वृत्ति से, हर प्रकार से उनका सहयोगी बनना है। बाबा ने कहा कि वृत्ति से अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो वो आत्माएं उस वृत्ति के प्रभाव में, उसके आकर्षण में इस महल की ओर आकर्षित होकर के आए। और दूसरी बात है कि अपने संकल्पों को ऐसा शक्तिशाली, श्रेष्ठ, शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न बनाएं, जो कि आप जिसके प्रति जो संकल्प करें उस आत्मा को एहसास हो, उसको महसूस हो कि जो उसकी जरूरत है वो उसको प्राप्त हो रही है। साथ साथ वाचा के माध्यम से हम सभी बाप की पहचान देते हैं, समय की पहचान देते हैं, और वर्तमान समय परमात्मा इस संसार में कैसे आकर के सबकी पालना कर रहा है, सबको भरपूर बना रहा है, सभी मनुष्य आत्माओं की जो चाहना है उन चाहनाओं को पूर्ण कर रहा है। तो वाचा के माध्यम से उनको उस बात का एहसास कराना, बोध कराना, और कर्मों के माध्यम से अर्थात अपने प्रैक्टिकल जीवन को, अपनी लाइफ को ऐसा आदर्श बना के रखें जो आत्माएं न चाहते हुए भी इस ईश्वरीय यज्ञ की ओर, इस महल की ओर स्वतः ही आकर्षित हों, उनको महसूस हो कि अवश्य ही इन्हें कुछ विशेष प्राप्ति हुई है जो वहां जाकर के हमको देखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि भला आपके बोल से, शब्दों से वो आकर्षित ना भी हो, लेकिन आपकी चलन ऐसी हो, आपका व्यवहार ऐसा हो, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी हो जो उन आत्माओं को स्वतः ही आकर्षित करें। तो इसमें हम सभी जो मनसा सेवा की बात है वो तो कर ही रहे, लेकिन वो जो उसका शॉर्ट टाइम है उसको हमें निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। तो हमारी मनसा ऐसी हो जो सारा समय, जैसे हम यहाँ कुछ समय के लिए अभ्यास करते हैं कि संसार की आत्माओं को इमर्ज करके अपनी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं या बाबा से प्राप्त हुए खजाने उनको देते हैं, तो कुछ समय यहाँ देते हैं, लेकिन हमें उसको अभ्यास अपने कार्य व्यवहार में भी, कर्म करते हुए भी उसका अभ्यास इतना बढ़ाना है जो कि सारा समय हमको सेवा करते रहें। तो इस प्रकार से वर्तमान समय जो संसार वीरान बस्ती बनी हुई है, उन आत्माओं की सेवा करने के लिए हमें पहले स्वयं को संपन्न बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आत्मा भरपूर है वही दूसरों को सहयोग दे सकती है। तो पहले स्वयं को संपन्न बनाना, फिर संसार की अन्य आत्माओं के प्रति रहम दिल बनकर उन आत्माओं को भी इस मधुबन, इस खुशियों के महल की ओर आकर्षित करना, इसकी पहचान देना, इसका अनुभव कराना। संसार की आत्माएं जो बेसहारा बन चुकी हैं, उन आत्माओं को भी प्रभु का सहारा मिले, प्रभु का प्यार मिले, उनको अपना अधिकार मिले, जिससे उनका जीवन भी श्रेष्ठ और सुखी बन जाए, जो उनकी चाहनाएं हैं वो पूर्ण हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। हमारे अरविंद भाई ने बहुत अच्छे तरीके से इस बातों को स्पष्ट किया, तो हमारा मेरे टॉपिक में ये बताया गया है कि आज संसार में जहाँ भी देखो, जिधर भी देखो, नफरत की आंधी, नफरत की आग चारों तरफ जल रही है। जहाँ भी देखो, चाहे हर घर से लेकर के गांव बस्ती तथा देश दुनिया में इस आग ने किसी को छोड़ा नहीं है। इसलिए संसार के सारे मनुष्य आत्माएं आज इस आग में जल रही है। इसलिए इस हालत में अगर देखा जाए, इसके कारण से कई प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक विकृतियों का दुनिया में जन्म हो चुका है, और संसार इसमें एक दिन तो आगे उसमें आ चुकी है। इसका भुगतना सबको पड़ेगा ही, क्योंकि हर धर्म में आज मतांतर है, तो उसके कारण से जो नफरत एक धर्म के प्रति दूसरा धर्म का, एक व्यक्ति का नफरत दूसरों के लिए, जाति धर्म भाषा भाषी इस सभी में मतांतर है आज। तो इस कारण से नफरत की आग ने सभी मनुष्य आत्माओं के दिल दिमाग को उजाड़ करके रख दिया है। तो इस कारण से आज मनुष्य आत्माएं चाह करके भी अपने को सुख और शांति खुशी के लिए मनुष्य आत्मा क्या नहीं करती है दुनिया में आज, तो धन के पीछे लग जाती है। जब धन इकट्ठा कर लेती है तब तक उसका तन खराब हो चुका होता है, फिर तन के पीछे लग जाती है, बाद में जाके मन खराब हो जाता है। तो इस कारण से जहाँ देखो, जिधर भी देखो, सभी तरफ से जो मेन चीज पकड़ने चाहिए, मेन चीज तो पकड़ते नहीं, और वो अनेक शाखाएं पकड़ते हैं, लास्ट में तो गली में भटकने के बाद में हाईवे में तो सबको आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आज जहाँ तहाँ जिधर जिधर जहाँ भी देखते हैं, इस प्रकार की घड़ियाँ संसार में मंडर रही है। आज हम देखते हैं देश देश के प्रति आए दिन कई सारी घटनाएं हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जिसके कारण से एक देश की लड़ाई के जैसे माहौल बन रहा है। तो इस हालत में अगर ये नफरत की तो आ गए ना, तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य आत्माएं आज सब कुछ पाने की होड़ में है। आज शस्त्र अस्त्र से लोग मनुष्य आत्मा अपने को तुलना करते हैं, लेकिन अंदर में जो छिपी हुई शक्ति है, जो छिपी ही ऊर्जा है, आत्मा का अनादि संस्कार ही प्रेम है। लेकिन उस प्रेम को मनुष्य आत्माओं ने आज जैसे कि जला के राख करके रख दिया है। इसीलिए उस प्रेम को जब तक हम जागृत नहीं करेंगे, उस चेतना के स्तर तक नहीं लाएंगे, तब तक मनुष्य आत्माओं के जीवन में भले कितना भी अरबपति खरबपति बन जाए, तभी भी जीवन में शांति सुख खुशी का अनुभव कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए हम सब जानते हैं कि हम सब ने भी इस भक्ति मार्ग में बहुत प्रकार के ठक्करे खाए हैं, धक्के खाए हैं। भक्ति से जैसे कि पूरे नफरत आ गई थी हम सबको, जितना करो जहाँ करो, इतने कई प्रकार की भक्तियाँ की गई, जिसमें नौदा भक्ति कहते हैं, नौ प्रकार की भक्ति, उसमें बहुत ज्यादा साधना तपस्या मनन चिंतन ये सब बातें आते हैं। लेकिन सभी बातें आने के बाद में भी जीवन में जो सुख और जो शांति जो खुशी न मिलने के कारण से हर धर्म के ठेकेदारों के पीछे हम पड़े थे, फिर भी जीवन में सच्चा शांति सुख और खुशी नहीं मिला। इतना तक कि गर्दन काट के अलग करने के लिए हम सब ने काशी कलवट का भी रास्ता अपनाए, फिर भी वहाँ से भी हम सबको निराशा ही हाथ लगा है। तो इसीलिए जब हम सब जानते हैं कि बाबा का बच्चा हम अपने अपने गांव में ही बन गए थे, क्योंकि मधुबन से ही ये सब चीज़ों का कई वर्षों तक रिसर्च होकर के 14 वर्षों तक तो ये संस्था हैदराबाद सिंध में इसकी प्रैक्टिस किया गया। तो फिर भारत में आने के बाद में इस ज्ञान को गृहस्थी में रह करके भी कैसे फॉलो किया जा सकता है, इस बातों का यहाँ पर पुष्टि हुई। तो फिर धीरे धीरे ये ज्ञान देश दुनिया होते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच गई। तो हम सब ने वहीं रह करके बाबा को जाना पहचाना, फिर हम सबको मधुबन के लिए खींच होने शुरू हो गई कि हम कैसे मधुबन पहुँचे, मधुबन जाकर के इसका अनुभव करने के लिए पहले हम सब ने अपने अपनी धर्मी मानसिकता बना लिया था। तो धीरे धीरे करते जब हम मधुबन पहुँचे तो मधुबन आने की जब बात शुरू हो गई तो हम सबको पहले से खुशियों का जैसे कि बांसर हो रहा है इस तरीके से हम अनुभव करने लगे। तो धीरे धीरे जब हम मधुबन आने के लिए टिकट तय किया तो उसके बाद तो मन की और ज़्यादा भागदौड़ मचना शुरू की। तो धीरे धीरे जब हम मधुबन पहुँचे तो जैसे यहाँ पहुँचते ही हमको ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे ये तो प्रेम की नगरी है, ये प्रेम का छत्र छाया है। यहाँ पहुँचने से हमें जिस प्रकार की खुशी मिली, जिस प्रकार की शांति मिली, बड़ों का आश्रय मिला, बड़ों की जैसे कि हम सबको ऐसे ऐसे महावचन वाक्य से हम सबको भली भांति भरपूर कर दिया अंदर से। तो यहाँ पहुँचते ही जैसे कि अपना घर है, अपनी ये दुनिया है, हम यहीं के थे और हम यहीं के हैं, इस प्रकार की सबको अनुभव हुआ है। तो इसीलिए मधुबन जैसे कि अपना घर लगने लगा है। तो यहाँ आने से हम सबको पहुँचते ही हम सबको यहाँ दिन भी भूलने लगे, डेट भी भूलने लगे, तारीख भी भूलने लग गया। तो घर की यादें आना बंद हो गई, जैसे कि सोचने से भी घर की याद नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जिस प्रकार से 5-6 दिन 8 दिन रहे तो उसमें हम सबको यह अनुभव सबको हुआ ही होगा, क्योंकि मधुबन वो प्रेम नगरी है जहाँ बाप दादा ने, मम्मा ने और हमारी अष्टरतन दादियों ने, 108 आत्माओं ने और हमारे जो दादाओं ने अपने जीवन को कुर्बानी दे करके इस शक्ति को परमात्मा के साथ में जोड़ दिया। तो भक्ति में तो हम कहा करते थे, हम तेरे एक बूंद के प्यासी हैं, तुम प्यार के सागर हो, हम एक बूंद के प्यासी हैं। लेकिन हम एक बूंद बची हुई थी हमारी, तो हम एक बूंद फिर सागर में मिलाए तो हम भी सागर ही जैसे मास्टर सागर बन गए। तो सागर हम भी मास्टर सागर हो गए। तो यहाँ आने के बाद में इस प्रकार का जो अनुभव हुआ है तो अनुभव के पीछे हमारी दादियों ने, बाबा ने, मम्मा ने जिस प्रकार की वाइब्रेशन छोड़ करके हम उन सब तो हम आने से पहले चल गए, चल चुके थे, चल बसे थे, लेकिन उन्होंने हम सब के लिए पहले से आह्वान करके रखा था, वो धरनी बना के रखा था। बाबा ने पहले से हम सबको संकल्प द्वारा जन्म दे चुके थे, क्योंकि इससे दुनिया आज इतने पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विकारों की जहाँ जगजगी है, तो इस हालत में जब तक माता पिता अव्यक्त रूप से अथवा सूक्ष्म रूप से हमारे सिर के ऊपर अगर हाथ न घुमाए, हम भी बाबा को पहचानने योग्य नहीं थे उस समय। तो उन्होंने ही ये सब हम सबको पहले से करके रखे थे, पहले से ये सब काम बना के रखे थे। तो यहाँ आने से ही हम सबको ये अनुभव हुआ कि अपना घर है। तो यहाँ जो सुख मिला, जो खुशी मिली, 5-6 दिन 8 दिन कैसे गुजर गए हमको पते नहीं चला। तो जाने की घड़ी करीब आने लगी तो फिर जाने का दिल नहीं हो रहा था, बिछोड़ने का दिल नहीं हो रहा था। तो यहाँ से निकलना माना जैसे कि ऐसा कोई नहीं होगा जिनके आँखों से पानी ना आता हो, आंसू ना आता हो। इस हिसाब से सभी को बाबा का घर में ये पालना मिला, एक एक यहाँ कण में, एक एक गली इस मोहल्ले में हम सबको प्यार, वो वाइब्रेशन हमारे अग्रजों ने, पूर्वजों ने दे करके गए थे। इसीलिए इस मधुबन का महत्व दिन दो गुना, रात चौगुना तब से लेकर के अब तक बढ़ती जा रही है। तो आगे जाकर के तो बाबा ने बोला ये तो प्रेम नगरी हो जाएगी, शिशमल बन जाएगा, या जो भी आ जाएगा उसके लिए, जैसे कि एक दर्पण के आगे जो कोई खड़ा हो जाता है तो उसको देखते ही मेरे शरीर के फीचर्स में क्या क्या है, अंदर में कमी कमजोरी दिखाई पड़ता है। तो यहाँ आने से उसको ये अनुभव होगा कि इन लोग इतने आगे और इन लोगों ने ये चीज पा चुके हैं, तो मैंने तो जैसे कि कुछ भी नहीं पाया। जैसे कि हम लोग तो वहाँ अपने मान शान पद पोजिशन स्टेटस के पीछे जैसे कि हम फिदा हो करके उसी को ही हमने सर्वोच्च समझ के रखा था, लेकिन यहाँ आने से उनको पता चलता है जैसे हम तो खाली ही रह गए। तो कई सारी ऐसी घटनाएं हम सब देखते हैं, जैसे कभी कभी बड़े बड़े लोगों को भी घुमाने का यह चांस मिल जाता है। तो मधुबन आने से सोचते हैं कि अभी 10-12 दिन पहले एक ग्रुप आया था, उनको अच्छी रीति से 1-1.5 दिन हमने घुमाए, उनको काफी नामी ग्रामीण थे, समाज सेवी थे। लास्ट में उन्होंने बताया कि देखिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन बहुत कुछ करने के बाद में हमने सब कुछ गवा दिया है। आप लोगों के पास में जो खुशी है, जो शांति है, जो आनंद है, जैसे कि यहाँ तो जो अज्ञानी उन्होंने भी ये महसूस किया है, जो उन लोग वृंदावन जैसे कि हरिद्वार जैसे कि मथुरा होकर के आए थे यहाँ पर, तो यहाँ आने के बाद में जैसे कि वो तो वृंदावन कुछ भी नहीं, वृंदावन ये है, मथुरा ये है, उन्होंने अपने दिल से कई बार बोला। तो इसलिए जो भूल से जैसे कि नाम तो यहाँ का था लेकिन नाम वहाँ पड़ गया, तो प्रैक्टिकल में आगे जाके ये जगह का नाम भी जो प्रैक्टिकल में ही होगा, क्योंकि यहाँ आगे जा करके किसी को कृष्ण का साक्षात्कार होगा, किसी को फरिश्तों का साक्षात्कार होगा, किसी को ब्रह्मा बाप का साक्षात्कार होगा, और जहाँ देखो तू ही का जो समय आएगा, तो उस समय हम सब ये अनुभव करेंगे कि सचमुच में हकीकत जगह यही है। और ये जगह बाबा ने बोला है कि आगे जा करके इसी समय आएगा कि जैसे कि सिर उतार के रख देंगे तो भी उसको अंदर आने के अलाव नहीं होगा, ऐसी जगह यह बनेगी। इसीलिए उस सभी का आधार यही है कि हम सबको दिल से जो प्यार मिला, जो स्नेह मिला, जो प्रेम मिला, उसके फल स्वरूप में आज हम सब उसके बदौलत हम यहाँ पर हैं। क्योंकि दुनिया में आज कहते हैं ना कि 2-4 बहनें अगर होते हैं घर में, पैदाइश बच्चे होते हैं, बच्चियां होती है, तो माँ बाप का पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इनको कैसे उनको माना सेटल किया जाए। लेकिन हमारी संस्था में देखिए आज इतने सारे बहने हैं, बाबा और ज्यादा मुंह तो ऐसे बना के रखते हैं कि देखो मेरे कितने सारे बच्चे हैं, आज मेरे घर का ये श्रृंगार है। इस तरीके से हम सबको जिस प्रकार से बाबा गर्व करते हैं हम सबको देख करके, तो हम सब आज ये खाने पीने की उम्र में संसार की दुनिया में देखा जाए विलासिता के जीवन है, खाने पीने घूमने मौज मस्ती के सारी चीज पड़ी हुई है, फिर भी आज हम लोग ने बाबा के लिए, बाबा ने जो प्रेम दिया, जो स्नेह दिया, जो हमारी भड़कन को दूर किया, हमारी थकान को दूर किया, तब हमने उनके लिए सब कुछ देने के लिए भी तैयार हो गए। तन मन धन सहित बाबा की सेवा में हम समर्पित हुए। तो इसका मतलब एक एक आत्माओं की बहुत बड़ी कुर्बानी है संस्था के लिए, क्योंकि बाबा से हमको वो जो प्यार मिला, जो प्रेम मिला, जो शक्ति मिली, प्रेम के साथ में बाबा ने हम सबको उस शक्ति दिया, वो नॉलेज दिया, तो आज हम यहाँ आते हैं तो अपना घर महसूस होता है। कई सारी आत्माएं कहते हैं ना कि मधुबन आज कारोबार बड़ा होने के कारण से शांतिवन में रहना पड़ता है कई सारी आत्माओं को, फिर भी कहते हैं कि एक बार मधुबन जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक शांति का, खुशी का, दिल में उस संतुष्टता नहीं आता है, क्योंकि मधुबन अपना लगता है। तो यही घर जो कल जाकर के ये चीज बनने वाला है, तो इसलिए जो प्रेम का जो पाठ बाबा ने पढ़ाया है, ये प्रेम का पाठ आज विश्व के कई सारे देश में हमारी दीदियों ने जाकर के, बहनों ने जाकर के संसार की आत्माओं को यहाँ पहुँचाए है। मधुबन से वो बाहर हुए और बाहर वालों को उन्होंने अंदर ला करके बाबा के बच्चे बनाए हैं। तो इसीलिए ये प्रेम का ही तो सबूत है। जैसे कि शुरू में तो यहाँ पर जैसे कि सेंटर गवर्नमेंट में उसको प्रयोग किया जाता है, फिर धीरे धीरे जैसे कि मोबाइल टावर जब शुरू हुई, पहले तो नेटवर्क तो कहीं दिल्ली में बम्बई में बना होगा, फिर गांव-गांव में उसका ब्रांचेस खुलते गए, टावर बनते गए, सबको सुविधा मिलता गया। तो आज सभी मनुष्य आत्माओं के देखते हैं ना प्रैक्टिकल में, सबके जेब में मोबाइल है, चाहे गरीब से लेकर के जितना भी अमीर हो सभी के पास में है। इसी रीति से आध्यात्मिक शक्ति, ये आध्यात्मिक प्रेम आज सभी आत्माओं को मिलने वाला है। बाबा ने तो यहाँ तक बोल के गए हैं कि सभी के मुख से निकलेगा कि मेरा बाबा आ गए। तो इस तरीके से हम सब ये अनुभव करते हैं। इसलिए कबीर ने भी बोला था कि शास्त्र कितना भी पढ़ो, दुनिया की किताबें कितना भी पढ़ो, लेकिन ढाई अक्षर अगर प्रेम का तुम नहीं पढ़ लोगे तो सारा जीवन व्यर्थ और धिकार है। तो इसी रीति से हम इसका अनुभव यह प्रैक्टिकल में करते हैं। इसीलिए आज हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आने वाले भी सोते ही महसूस करते हैं कि इनके पास में जो चीज है, जो आनंद है, जो खुशी है, जो स्नेह नेचुरल जैसे कि चेहरे से छलकती रहती है। इसीलिए हम सबको बाबा ने जो अनादि संस्कार हमारा बाबा ने इमर्ज करा दिया, तो अनादि के साथ में हमारा कनेक्शन है, तो इसके कारण से वो सातों गुण हमारे जीवन में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हम किसी गुण को, हम किसी शक्ति को प्रैक्टिकल जीवन में ला करके दिखाते हैं तो फुल अटेंशन दे करके उसको बाहर निकालने की, प्रैक्टिकल जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी मर्ज भी हो जाता है, उसको निकालने के तरीके हम नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए आगे जाकर के तो बाबा ने बोला है कि तुमको सर्वगुण संपन्न स्वर कला संपन्न बनना ही है। तो इसका मतलब आज अगर हम देखना चाहे और देखना अब और हम चाहते हैं तो जो प्रेम जो शब्द है ना, तो उसमें जैसे कि याद कहते हैं, बाबा ने बोला भगवान से याद करने की बातें अगर बोलते हैं तो लोगों को उतना ठीक नहीं भी लगते हैं, इसीलिए याद बाबा ने शब्द भी रखा है। तो याद माना हम बाबा से संबंध जोड़ते हैं, बाबा के करीब होते हैं, बाबा के समीप होते हैं, बाबा के सम्मुख होते हैं, और कभी बाबा को ही हम अपना साथी बना लेते हैं। तो इसमें भी बाबा ने बोला है कि जो सर्व संबंध से अपना अपने को बाबा को यूज करो, तो यो भी तो बाबा ने हमको प्रेम के लिए ही तो बोला है ना। सर्व संबंध से अगर उसको याद करेंगे तो संसार में बुद्धि भटकने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि आज तो मनुष्य आत्माओं को बाबा से निरंतर अगर प्राप्ति नहीं होती है तो प्राप्ति की तरफ बुद्धि जरूर जाती है। इसीलिए हम सब मानते हैं कि सर्व संबंध से हम उसको अगर दिल से याद करेंगे और सभी संबंध का अगर हमारे पास में अनुभव होगा तो बुद्धि कहीं जाकर के भटकने का, ठक्कर खाने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए ऐसे तो देखा जाए माया ने दिन प्रतिदिन अनेक अनेक चीजों की उपलब्धियां हम सबको करा दी है, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि बाबा का प्यार से ज्यादा प्यार दुनिया से कई चीजों से कोई साधनों से मिल जाए ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। लोगों ने अपना राजमहल और अपना जीवन ही जंगल में व्यतीत किया भगवान का प्रेम पाने के लिए, हिमालय में जाकर के 50-60-100 साल तक तपस्या किया उसको पाने के लिए, लेकिन हम उस प्यार के सोते हकदार बन गए। 7 दिन के अंदर में हम सबको वो चीज मिली जो हिमालय में बैठने वाले 60 साल तपस्या करने वाला साधु भी नहीं कहता कि मुझे भगवान मिला है, लेकिन यहाँ 7 दिन का कोर्स अगर ठीक रीति से करते हैं तो कहता है कि तो हाथ खड़ा करने के लिए कहेंगे तो दोनों हाथ खड़ा कर देगा कि भगवान से मुझे ये सब कुछ मिला है। तो इसलिए हम उस प्यार के प्यासे थे, उस प्यार के भूखे थे, उस प्यार के कारण से हम सबको ये चीज मिला है। इसलिए स्लोगन में भी लिखा रहता है कि मनुष्य को झुकाने के लिए तो शस्त्र अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मन को नहीं झुकाया जा सकता है, और मन को झुकाना है तो प्रेम का प्रयोग करो। तो इसका मतलब ये प्रेम ही सब कुछ है, दुनिया झुकने के लिए तैयार है लेकिन झुकाने वाला चाहिए, लेकिन वो प्रेम से ही दुनिया को झुकाया जा सकता है। तो प्रेम हमारे लिए पावन अस्त्र है, शस्त्र है,
तो यहाँ बाबा ने हम सबको मधुबन नगरी में वो चीज हमको दिया है जो प्रेम के आधार से हम सब जी रहे, तो उस प्रेम को अखंड अनवरत रूप से अपने जीवन में संजय हुए रखना यह हम सभी का दायित्व तो बनता है, क्योंकि आगे जाकर के माया का तो रूप रंग और ही बदलने वाली है। तो इसीलिए हम सब इतना हल्का भी न हो जाए कि हम बाबा के बच्चे तो बन गए, बाबा के तो हो ही गए हैं, बाबा के घर में तो रह ही रहे हैं, तो इतने में हम अपने को संतुष्ट न किया जाए, क्योंकि ऐसे कई सारी घटनाएं हम सब ने देखे हैं, हमारे आंखों से देखे हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे प्यार बाबा से कम होने लगता है तो दुनिया की तरफ खिंचाव ज्यादा हो जाता है। इसीलिए पहले पहले जो यज्ञ में बहुत प्रकार की कठिनाइयां विघ्न आए हैं तो मम्मा के लिए दिखाते हैं कि जब मम्मा किसी से मिल जाती थी, कोई एंटी ग्रुप से भी मिल जाती थी, तो उनसे जब मिलने के बाद लोग कहते थे, क्या कहते थे कि मम्मा ऐसी नहीं है, ये संस्था ऐसा ऐसा कहते थे मम्मा ऐसी नहीं है, ये संस्था ऐसा है, संस्था के भाई में नहीं ऐसे तो इस तरीके से लोगों ने जो प्यार के आगे सपने घुटने टेके थे, इसी रीति से आगे जाकर के हम सबके आगे ये भी बातें आएगी कि जैसे कि कोई व्यक्ति खराब होता है, कोई ऊपर नीचे चल जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये संस्था खराब नहीं है लेकिन ये व्यक्ति खराब है इस तरीके से लोग कमेंट करेंगे। इसीलिए हम बाबा का अपना इज्जत प्रतिष्ठा बनाए रखना, उनके प्रति जितना नम्र चित्त, जितना ज्यादा हम तपस्या साधना के प्रति ज्यादा जागरूक होंगे, तो फिर मधुबन का नाम के साथ साथ में हम सब जो ग्रुप में आज तपस्या के लिए कई तरीके युक्तियां आप सर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, नए विधियां हम प्रयोग में ला रहे हैं, तो इस सभी का फायदा हम सबको मिलने चाहिए, मिल भी रहा है, क्योंकि मिसाल बनकर के दिखाएंगे तभी सभी लोग वाह वाह करेंगे। इसीलिए हम सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, बाबा के घर में ये बाबा जिस घर में हम सबको प्रेम की नगरी में बैठने का जो सौभाग्य दिया है, यहाँ रह करके सेवा करने का जो मौका दिया है, यहाँ आकर के हम स्वयं भगवान से मिलते हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं। तो उस समय कहते थे कि बाबा 16-16 घंटा तक यहाँ पर बच्चों से मिलते थे, प्यार लुटाते थे, संसार को जो वाइब्रेशन देते थे, आज साल भर में टन भी कम होते जा रहे और बाबा आने का समय भी कम होता जा रहा है, कभी तो लगता है कि आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसी हालत आ रहा है। इसीलिए हम सब हम अपने को प्रेम स्वरूप बना के रख दिया जाए, अपना स्थिति इतना स्ट्रांग हो जाए कि प्रेम के आगे तो माया भी ठंडा पड़ जाएगी, संस्कार भी ठंडे पड़ जाएंगे, आदत स्वभाव भी ठंडे पड़ जाएंगे। इसीलिए प्रेम से बढ़कर दुनिया में भी भक्ति में दिखाए, कहीं संत हुए हैं, कहीं भक्त हुए हैं, प्रेम के आगे भगवान को भी उन्होंने नतमस्तक कर दिया है। तो ये सब हम जानते हैं, समझते हैं, हम सबको जानकारी में होते हुए भी हम सब अपना स्वरूप द्वारा सेवा हो जाए, हम अपना संस्कार को ऐसा अच्छा बना दिया जाए, प्रेम स्वरूप बन जाए, और मधुबन में रहने का औचित्य यही होगा, और आगे जा करके हम सबको इसको प्रैक्टिकल में सबको देना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। एक बार हकीकत घटना हमने देखे थे, हमारे सेंटर में वो माता जी डेली आती थी सेंटर में, तो अनुभव होता ही नहीं था, तो एक दिन बाबा ने खास उसको कुछ अनुभव कराए, तो सुबह सुबह वो लड़ने के लिए आ गई थी कि इतने दिन तक तुम इतने अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे थे, हमको क्यों नहीं बताए तो आगे जाकर के भी लोग बोलेंगे कि तुम लोग मधुबन में रह करके इतना सब कुछ किया, पालन पोषण जीवन हरण वरण किए, तो इसका सबूत दो,
तो
तो सबूत हम अगर न दे सके तो इसीलिए हम फिर आगे जाकर के वो दिन हमने कैसे गुजारे उसके लिए फिर एक पश्चाताप का झलक हमें देखना न पड़े। इसीलिए जो बचा हुआ समय है उसको हम अपने स्वरूप बना करके दिखाए, स्नेह स्वरूप, प्रेम स्वरूप, जहाँ सभी आत्माओं को आज जरूरत है, जो आज हमें आप सका देने के जो काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, उसमें भी हम प्रेम स्वरूप का ही ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम नहीं होगा दुनिया के लिए तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में संकल्प भी आ नहीं सकता है। इसलिए इसका फल यही है कि हम अपने जीवन को ऐसा सबूत बना के दिखाए। ओम शांति।